તારીખ 27/12/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 444 અને 446 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 794
પત્રાંક 444 પાનું 370 સંસારીપણે વસતા કઈ સ્થિતિએ વર્તીએ તો સારું એમ કદાપી ભાસે તો પણ તે વર્તવાનું પ્રારબ્ધ આવેલ છે. કોઈ પ્રકારનું કાંઈ રાગ દ્વેષ કે અજ્ઞાનના કારણથી જે ન થતું હોય તેનું કારણ ઉડે જણાય છે. અને આપે લખેલા પત્રના સંબંધમાં પણ તેવું જાણે બીજો વિચાર કે શોક કરવો પડતો નથી. શું કહેશે? સંસારી પણે સે બસતે હુએ કોણ સી સ્થિતિ મેં સંસારી રૂપ સે રહેતે હુએ ઇસ સ્થિતિ સે વર્તન કરે તો અચ્છા એસા કદાચિત ભાષિત હો તો ભી વહ વર્તન પ્રારબ્ધ આધીન હૈ. ક્યા હૈ? બાહ્ય સંસારી પ્રવૃત્તિ કે વિષય મેં લિખ રહે હૈ કે સંસાર કી પ્રવૃત્તિ તો પ્રારબ્ધ આધીન હી રહેતી હૈ. હમ એસા કરે તો ઠીક, એસા કરે તો ઠીક, હમ વૈસા કરે તો ઠીક, યે બાત સબ કલ્પના કી હૈ, ફાલતું કી હૈ. જૈસા પ્રારબ્ધ હોતા હૈ વૈસા યે પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ. હમ ઉસમેં ફેરફાર કરને કા બહોત વિકલ્પ વિચાર કર લેતે હૈ, ફિર ભી વો હમારે હાથ કી બાજી નહીં હૈ, વો તો પ્રારબ્ધ આધીન હૈ. જ્ઞાની કો સંસાર કી પ્રવૃત્તિ ઉદય રૂપ હૈ ઇસ કારણ સે કે ઉનકો કુછ રાગ દ્વેષ યા અજ્ઞાન કે કારણ સે નહીં હોતી હૈ, વો ઇસલિયે વો પ્રારબ્ધ આધીન ઉદય હૈ. લેકિન રાગ દ્વેષ ઓર અજ્ઞાન સે જો પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ ઉસકો ઉદય નહીં કહેતે હૈ, વો તો અપના મોહભાવ હૈ, ઇસલિયે રાગ દ્વેષ હોતા હૈ, ઉસકો ઉદય મેં નહીં લે જા સકતે. इसलिए लिखा है कि किसी प्रकार से कुछ राग द्वेष या अज्ञान के कारण से जो न होता हो वो ज्ञानी कोई नहीं होता है, उसका कारण उदय मालूम होता है. ज्ञानी को राग द्वेष अज्ञान नहीं है, फिर भी प्रवृत्ति होती है तो उदय के कारण से होती है. तो ज्ञानी की बात अलग है और दूसरे संसारी जीव की बात अलग है. और आपके लिखे हुए पत्र के संबंध में भी वैसा जानकर अन्य विचार या शोक करना ठीक नहीं है. तो आज मैंने कुछ लिखा है तो वो सूचना दे रहे हैं कि आपको भी कुछ शोक करना नहीं है, उचित नहीं है. जो भी होता है तो सिर्फ आप उसको देखते रहो, उसमें कोई फेरफार करने का या कुटुंब प्रतिबंध के कारण से कोई राग द्वेष करने का हमको ठीक नहीं लगता है. कोई घटना ऐसी होगी जो खेदकारक होगी तो फिर शोक करना ठीक नहीं है. खेद या शोक तो इसलिए होता है कि अपनत्व के कारण से होता है, तो उसमें वो सूचना है कि आप अपनत्व को छोड़ दो, आपको शोक नहीं होगा, अपनत्व के कारण से हो रहा है कि तो जो प्रारब्ध है वैसा ही होगा। એ રીતે તમારે હોવું જોઈએ, થવું જોઈએ એમ કહેવાનું આશય છે, તમને જે પ્રકાર ચાલી રહ્યો છે તમે જે લખો એ બાબતમાં પોતાપણાને કારણે શોક થાય, ખેદ થાય એવું લાગે છે, એ ન થવું જોઈએ, નહીં થવું. जल में स्वाभाविक शीतलता है, पानी है स्वभाव से शीतल है, वो पदार्थ स्वभाव से शीतल है, परंतु सूर्यादि के ताप से, सूर्य या अग्नि, अग्नि या सूर्य के ताप से, ताप के योग से, संयोग से वो उष्णता वाला दिखाई देता है, पानी भी गर्म दिखाई देता है। उस ताप का दूर हो, योग दूर होने पर, अग्नि हट जाने से, वही जल शीतल लगता है या अपने आप शीतल हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ठंडा है। बीच में वह जल शीतलता से रहित लगता है, बीच में मैंने गर्म हुआ है उस वक्त उसकी शीतलता अनुभव गोचर नहीं होती, वो गर्म लगता है, वह ताप के योग से है, उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गर्म हो गया है अग्नि से या सूर्य के कारण से गर्म हो गया है, अभी हो जाते हैं यहाँ पर टाँके गर्म हो जाती है तो दोपहर को नल में भी गर्म पानी आता है, तो बीच में सुबह शाम तो ठंडा आता है, बीच में गर्म आता है, क्या कारण है? ताप के योग से गर्म हुआ है, वो दृष्टांत है। इसी तरह ये सिद्धांत भी लेना है, इसी तरह ये प्रवृत्ति योग हमें है, हमको भी ये जो प्रवृत्ति है इसके कारण से हमारे परिणाम कुछ दिखते हैं, वो प्रवृत्ति के कारण से दिखते हैं, परंतु अभी तो उस प्रवृत्ति का वेदन करने के सिवाय हमारा अन्य उपाय नहीं है। जो भी चारित्र मोह के राग विष दिखाई देते थे वो प्रवृत्ति योग ऐसा ही कोई प्रवृत्ति योग था, तो उसमें परिणाम चल जाते थे। गुजरातीमां एम लखे छे, एम आ प्रवृत्ति योग अमने छे, पण अमारो ते प्रवृत्ति विषे हाल तो विद्या सिवाय ने उपाय नथी। ये पूर्व कर्मनो योग छे, एने लईने પ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ સંબંધિત પરિણામ છે। અમારો આત્મા અને આત્માથી અનુકૂળ નથી પ્રવૃત્તિ, જેમ પાણીને અગ્નિ અનુકૂળ નથી તેમ અમારા આત્માને આ પ્રવૃત્તિ અનુકૂળ નથી। વિચાર, વિશેષ વિચાર કરતા ऐसा लगा है कि अभी तो उस प्रवृत्ति का वेदन करने के सिवाय हमारा अन्य उपाय नहीं है, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं लगता है, प्रवृत्ति में रहने पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है हमारे लिए। ऐसे आत्मा तो राग द्वेष रहित है, कर्म संयोग से उदय में जोड़ता है उतना उनको स्वभाव विरुद्ध परिणाम होता है, जैसे पानी को स्वभाव विरुद्ध गर्म होना हुआ वैसे। ऐसा कहने की बात कुछ 446 में से प्रत्येक प्रदेश में जीव के उपयोग के लिए आकर्षक इस संसार में एक समय मात्र भी अवकाश लेने की ज्ञानी पुरुषों ने हाँ नहीं कही, इस विषय में केवल नकार कहा है। सुनो कैसे, प्रदेश प्रदेश थी एटले प्रत्येक प्रदेश है जीवना उपयोग ने आकर्षक एवा संसार में। कैसा है संसार, जीव के सभी प्रदेश को खींचता है वो। मैंने पूरा पूरा जीव संसार के प्रति आकर्षक आकर्षित है, उनको आसक्ति हो जाए, ऐसा संसार है। कैसा संसार है, जीव को बहुत आसक्ति हो जाए, सर्व प्रदेश से आसक्ति हो जाए, ऐसा ये संसार है। ऐसे संसार में सर्व प्रदेश में ने पूरा का पूरा, वैसे तो पंचेंद्रिय के विषय संसार में है। जीव एक साथ एक ही विषय को भोग सकता है। फिर भी आप देखें कि जब कोई शादी ब्याह होता है तो खाना तो अच्छा बनाते ही, मिठाई वगैरह, उस वक्त संगीत भी चलता है और सेंट अत्तर अगरबत्ती जलाते हैं। कभी हमारे यहाँ गुजरात में खाने के टेबल पे सुगंधित अगरबत्ती जला देते हैं प्रत्येक के पास, एक एक आदमी के पास, जैसे खाना परोसता है वैसे अगरबत्ती भी रख देते हैं जली हुई। हाँ, एक एक भाणा में, एक एक भाणा है, बधाई ने सुगंध आवे। कपड़े और डेकोरेशन तो है ही आँख के विषय, और गर्मी के दिन हो तो एयर कंडीशन चलाते हैं, ठंडी के दिन है तो हीटर लगा देते हैं, तो संगीत चलता है कर्णेंद्रिय के लिए, स्पर्श रस घ्राण चक्षु और कान। जीव को एक साथ सभी चाहिए है क्या नहीं, और स्पर्श में देखो सभी प्रदेश में स्पर्शेंद्रिय तो है, तो पूरा का पूरा स्पर्श चाहता है कि नहीं चाहता है, कि ठंडा लगे तो पूरा ठंडा, गर्म लगे तो ठंडा, अच्छा इसको सुवाड़ापन चाहिए तो वो पूरा पूरा का पूरा चाहिए ना। प्रदेश प्रदेश से मैंने पूरा आत्मा इस संसार के पदार्थ के प्रति आकर्षित हुए, ऐसा ही संसार का स्वरूप है। क्या ऐसा ही संसार का स्वरूप है, उपयोग के लिए आकर्षक, उपयोग खींचता है, इस संसार का ऐसा स्वरूप है, उसमें एक समय मात्र भी अवकाश लेने की ज्ञानी पुरुष ने हा नहीं की। भाई एक समय मात्र तो तू संसार थी जा, पछी तू तार संसारी पण मोटी छोड़ी दे जा। ज्ञानी ने हा नहीं की। एक समय के लिए भी अलाउड नहीं किया, रजा नहीं दिया है कि तुम संसार के प्रति आकर्षित हो। इस विषय में केवल नकार कहा है, नहीं दिए बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा आकर्षण जो है, आसक्ति है, वो तुमको आकुलता और दुख में ले जाने वाला है बात है। तुमको दुखी होने की बात है, सुखी होने की बात उसमें है ही नहीं। और ये सिद्ध भी होता है, साबित भी होता है कि आप से अच्छी मिठाई खाते हो, खाना बंद कर देना पड़ता है। क्यों? अगर इसमें सुख होता तो सुख बढ़ता जाता, लेकिन सुख बढ़ता नहीं है। थकान क्यों आती है खाते खाते? किसी भी विषय में आप थक जाते हो कि नहीं थक जाते? क्यों? सुख हो तो बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकली वो सिद्ध होता है कि उसमें सुख था ही नहीं, केवल सुख की कल्पना थी। वास्तव में दुखी था जो इसका असली स्वरूप आके सामने आ गया। आया कि नहीं आया? फिर भी जीव बार बार मोह के कारण किसे वो बात भूल जाता है, यही कारण है। उस आकर्षण से यदि उपयोग अवकाश को प्राप्त हो तो उसी समय वह आत्मरूप हो जाता है। अगर ये आकर्षण यानी मोह भाव मिट गया तो आत्मरूप उपयोग हो जाता है। ते आकर्षण थी उपयोग जो अवकाश पामे, अवकाश पामे ले खाली जगह आकर्षण छूटी जाए तो तेज समय ते आत्मा पणे थाय छे, उपयोग आत्माकार होता है, यानी वो उपयोग स्वसंवेदन रूप हो जाता है। अपना स्वरूप का ज्ञान और आनंद का वेदन कर लेता है, दुख भाव छूट जाता है। तेज समय आत्मा ने विशेष उपयोग अनन्य थाय छे, उसी समय आत्मा में भव उपयोग अनन्य हो जाता है, यानी तन्मय हो जाता है। अन्य नहीं ते अनन्य, उपयोग और आत्मा एक हो जाता है, तदाकार एकाग्र तन्मय तद्रूप हो जाता है और वही आत्माकार हो जाता है, स्वरूपाकार हो जाता है। और स्वरूप ज्ञान आनंद रूप है तो ज्ञान आनंद रूप उपयोग हो जाता है। इत्यादि अनुभव वार्ता जीव को सत्संग के दृढ़ निश्चय के बिना प्राप्त होना अत्यंत विकट है। आवी जे स्वरूप अनुभवनी वात छे, ये जीवने सत्संगना दृढ़ निश्चय विना प्राप्त थवी अत्यंत विकट छे। तो ऐसा आत्मानुभव है, आत्मा में अनन्य भाव हो जाए, वो बिना सत्संग किसी को होता नहीं है। इसका कारण सत्संग है। तो जितना आत्मानुभव रूप कार्य का हमको मूल्यांकन है, उतना ही मूल्यांकन हमको सत्संग का आना चाहिए, क्योंकि वो इसका कारण है। कार्य का मूल्यांकन है तो कारण का मूल्यांकन होना चाहिए यथार्थ रूप से, तभी तो कार्य का मूल्यांकन यथार्थ है। हम आत्मभाव को, आत्म शांति को तो कीमत देते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, आत्मा को शांति बनी रहे, सुख बना रहे, आनंद मन मिलता रहे। लेकिन इसका कारण को हम तुल नहीं देते। जितना तुल हम आत्मा के आनंद को और सुख को देते हैं, उतना तुल हम कारण को नहीं देते हैं। तो कहाँ से कार्य होगा? बिना कारण तो कोई कार्य होता नहीं। तो ये हमको आत्मा की सुख शांति चाहिए, और कारण हम उल्टा करें तो हमारी बात यथार्थ नहीं है। कारण भी तो सही होना चाहिए। सत्संग नो दृढ़ निश्चय हो ये सत्संग वगैरह आचीज नहीं मिले, એમને એમ નહીં મળે, બીજું બીજું કોઈ એનો સાધન જ નથી ને, પરમ સાધન છે આ એક જ 609માં શું કીધું કે શ્રી તીર્થંકર દેવે સત્સંગને એનો આધાર કીધો છે, જે અસંગ દશા પામવાની છે કે જેને લઈને આત્માને સુખ શાંતિ અને આનંદ વર્તે અસંગ દશાને કારણે, એનો આધાર શું છે? આધાર સત્સંગ, એકમાત્ર આધાર સત્સંગ છે, 609માં કીધો કે નહીં એમ શ્રી તીર્થંકર દેવે કહ્યું છે। ચૂંકિ સાધન કે વિષય મેં લોગ ભૂલે હુએ હૈ, કોઈ માલા ફેર લેતા હૈ, કોઈ જપ તપ કર લેતા હૈ, કોઈ સંયમ પાલ લેતા હૈ, કોઈ દીક્ષા લઈ લેતા હૈ, કોઈ દયાદાન કર લેતા, કોઈ જાત્રા કર લેતા હૈ, કોઈ શાસ્ત્ર પઢને કો લગ જાતા હૈ, કુછ ને કુછ અનેક પ્રકાર કે યમ નિયમ સંયમ આપ કે યોગ ને ત્યાગ વિરાગ થાગ લિયો કર લેતા હૈ। સત્સંગ કી સૂઝ નહીં હૈ, સૂઝ વો આની ચાહીએ કે બિના સત્સંગ ઓર પરમ સત્સંગ કે બિના એ આત્મજ્ઞાન ઓર આત્મશાંતિ મિલને વાલા નહીં હૈ। તો ઉસમેં લિખા ને પ્રાણ ત્યાગ હોને કા પ્રસંગ કો સ્વીકાર કર લેના, લેકિન સત્સંગ કો ગૌણ નહીં કરના હૈ કે નહીં હૈ। क्योंकि सत्संग में ही वो बात मिलती है, उसका उपाय मिलता है, इसके बिना वो बात मिलती नहीं और कहीं जगह है ही नहीं। संप्रदाय के लोग, चाहे जैन संप्रदाय नाम हो, संप्रदाय के लोग क्रियाकांड में सब फंसे हुए हैं और कोई बात दिखने में नहीं आती। जैसे अन्य मत में शुभ भाव से धर्म होता है, वैसे ये क्रिया के शुभ भाव में धर्म हो गए होने का ये भ्रांति संप्रदाय में फैली हुई है, और त्यागी लोग भी वही कराते हैं, ये क्रिया करो वो क्रिया करो, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, ये करो वो करो, इससे तो कोई न धर्म होने वाला है न कोई शांति मिलने वाली है। भूले हुए सत्संग को भूल जाते हैं। 200 साल पहले की बात है, जयपुर में टोडर मल जी थे, करीब 200 साल हुए वो सत्संग कराते थे। आज भी वो मंदिर जो डोरी बाजार में है वहाँ सत्संग चलता था, हम गए थे वहाँ स्वाध्याय कराने को, तो बोले कि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि 200 साल में यहाँ नियमित स्वाध्याय चलता ही है, ऐसी परंपरा चली है। ट्रुडलमल जी के बाद जयचंद जी हुए वहाँ, जयचंद जी छाबड़ा, वो स्वाध्याय कराते थे, वो भी ज्ञानी हुए वहाँ, जिसने वो समय सार के भावार्थ लिखे हैं और समय सार का अनुवाद किया है। वो ढूंढारी में अनुवाद किया था उस जमाने में अपनी भाषा में। और ट्रुडलमल जी ने भी मोक्षप्राण प्रकाशक तो ढूंढारी में ही लिखा है, वही देश भाषा थी उस वक्त राजस्थान की, वही देश भाषा थी, आज तक चलता है ऐसा बोलते। इसका मतलब क्या हुआ कि तब से ही सत्संग का महत्व उतना स्थापित किया था, उतना स्थापित किया था कि इसकी परंपरा चल रही है। गुरुदेव ने भी इसकी स्थापना बहुत अच्छी तरह की, तो अपने हर गांव के मंडल में सत्संग चलता था। अब पूजा भक्ति का लाइन चालू हो गया, जो संप्रदाय में होते हैं वो, तो चलो 8 दिन का पूजन लगाओ, 10 दिन का पूजन लगाओ, 6 दिन का पूजन लगाओ, वो पूजन लगाओ, वो पूजन लगाओ। कुछ सोनगढ़ में वही चल रहा है, सत्संग स्वाध्याय कम होने जा रहा है, लेकिन वो मालूम होना चाहिए कि अनुभव वार्ता, अनुभव की बात बिना सत्संग बिना मिलने वाली नहीं है। ते सत्संग निश्चयपणे जाण्यो छे, इस सत्संग को जिसने निश्चय रूप से जाना है इतने नो वास्तविक स्वरूप खरु स्वरूप जाण्यो छे, एवा पुरुष ने ते सत्संगनो योग रहेवो ये दुष्म काल ने विषय अत्यंत विकट है। ऐसे पुरुष को उस सत्संग का योग रहना इस दुष्म काल में अत्यंत विकट। सत्संग की महत्ता जिसने जानी है, महत्व जाना है, उसको भी सत्संग का योग रहना कठिन है, तो दूसरे को तो कहाँ से मिलेगा कि जिसको उसका महत्व नहीं है, उसको तो बगल में सत्संग होगा तो भी वो जाएगा नहीं, वो उपेक्षा करेगा। एक तो दुर्लभ चीज है, तो उसका महत्व जाना है उसको भी मिलना विकट है, तो जिसको महत्व नहीं जाना है उसको तो कहाँ से मिलेगा, उसको तो मिलने के बहुत कठिन बात होगी। जिस चिंता के उपद्रव से आप घबराते हैं, वह चिंता उपद्रव कोई शत्रु नहीं है, कोई ज्ञान वार्ता जरूर लिखे। लोग शत्रु से घबराते हैं, तो कहते हैं कि आपको जो उलझन है, अकुलाहट है, मुंझान मैंने अकुलाहट है जिस बात की, वो तो चिंता उपद्रव कोई आपका शत्रु नहीं है, वो तो पानी आया है तैरने के लिए, पानी आया है तैरने के लिए, कोई आकुलाहट करने की घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। वो प्रतिकूलता का उदय था सुभाग भाई को, ये कोई शत्रु नहीं है आपका, आप घबराइए मत। ये उदय में आपको आत्म कार्य करना है, उदय को आत्महित में निमित्त बना लो। कोई भी कैसा भी उदय हो, अब चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो बना सकते हो, बाकी तो सारा संसार में लोग उदय में राग द्वेष करते हैं अज्ञान के कारण से, और नए कर्म को बांधते हैं और उस कर्म को भोगने के लिए अधोगति में चले जाते हैं। अज्ञान से वैसा ही होता है। अगर सही ज्ञान मिला तो आपकी हालत वो दूसरी हो जाएगी। आखिर में पंचम गति में चले जाओगे, निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष मिलेगा। वर्तमान में भी सुख शांति और आनंद मिलेगा और भविष्य में भी अनंत काल तक वो मिलता रहेगा, और चाहिए भी क्या। सिर्फ समझ और ना समझ इसका फल है। समझ का फल मोक्ष, ना समझ का फल दुख। और कितना दुख कि जिसकी कोई हद नहीं है उतना दुख मिलेगा। अभी ये मत सोचना चाहिए कि अभी तो दुख नहीं है ना, ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जो विचारवान होते हैं वो भविष्य का, अपने सुख शांति का अवश्य अवश्य विचार करता है। जो ना समझ है वो विचार नहीं। कुलता में रस वही दुख भाव है। अगर हमारा अवलोकन हो तो मालूम चलेगा। अनुकूलता में रस होना वही दुख भाव है, वो अवलोकन के बिना मालूम नहीं पड़ता। हम ऐसे बहुत लोगों को देखे हैं कि जिसने बहुत परिश्रम करके पैसे कमाए, 60-70 साल की उम्र हो गई, पैसे भी मिल गए प्रारब्ध के कारण से, परिश्रम के और अकल होशियारी के कारण से नहीं, प्रारब्ध के कारण से मिल गए। रस उतना ले लिया, जैसे मिलता गया रस आता गया, जैसे मिलता गया रस आता गया। अभी कोई चिंता का विषय नहीं है, सब प्रकार के अनुकूलता है, लेकिन बेचैनी चालू हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि मालूम नहीं क्यों बेचैनी हो रही है। हम तो पानी मांगे तो भी दूध मिले, ऐसी अनुकूलता है हमको। सब प्रकार से हम सुखी हैं, ऐसे ऐसे भी लोग। कभी कभी तो किसी को कुछ न कुछ उपाधि होती है, लेकिन हमने तो ऐसे लोग भी देखे कि हमारे परिवार वाले हमको अनुकूल हैं, ऐसे भी हैं। सब सगे संबंधी सब बहुत अच्छे हैं, इज्जत भी अच्छी है समाज में, और दान भी देते हैं, और दुर्लभ जी भाई मैंने मैंने रात दुर्लभ जी ने अपने आवाज मतलब दुर्लभ गुजर गया दाए देने खास मित्र डीएसएम कह दिया था हूँ डे बहन बुद्धि अनुभव था। एक मिनट छोकरो पर विनय विवेक बहुत सारा सवार में ही हमने बताऊँ बोलो नाश्तो फिर से आते खूब आग्रह थे पोते कोस कोस बनावे करे। हाँ दीकरी जमा बदा होने के सिल्क मिल था मुंबई में रेशम बाजार में ऑफिस थी। અત્યારે પછી કઈ જવેરી બજાર બાજુ ઓફિસ કરી હતી આશ્રીસ મહિને સવા 1,00,000 રૂપિયા ભાવનગરમાં દાન આપ્યું છે, બોર્ડિંગ થઈ મગરજન વિદ્યાલય 1,50,000 રૂપિયા હતા એ જમાનામાં, તેથી બહુ મોટી રકમ મેં આપી હતી. અહીંયા આવે ને ગરીબ ગુરબાને વિદ્યાર્થીઓને ચોપડીઓ ગરીબ ગુરબાને અનાજ 5-10-20-25 હજાર આડે હાથે ખર્ચે છે. મારું નામ કંઈ નહીં દેવા, જરૂરિયાત પાસે મોકલાવી દેજો, અનાજ મોકલાવી દેજો, રૂપિયા મોકલાવી દેજો. 5-25 હજાર આડે હાથે વાપરી નાખ્યા આવે છે. ઉડાડ માણસ રાતે ઊંઘ આવે ને થયું શું એને બેડરૂમમાં એક નોવેલ પડ્યું. મેં સહેજે પૂછ્યું કે આ કોણ વાંચે? તો હું વાંચું છું. કે તમે આવા પુસ્તકો વાંચો છો? ઉંમર મોટી નોવેલ વાંચો? મને રાતે હું નથી આવતી. ને જો ચોપડી ન વાંચું તો એવો વિચારે ચડી જાઓ ને એવો વિચારે ચડી જાઓ ને પછી એટલી આકુળતાને મૂંઝવણ થવા માંડે ને એટલી બેચેની થવા માંડે ને બીજે દિવસે પછી પેટ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય ને તબિયત બગડે ને પછી માનસિક સારી રીતે શરૂ કરાવે. એટલે રાત્રે 10-10:30 સુધી તો બધા બેઠા હોય, 11 વાગ્યા સુધી તો કંઈ ટીવી આ તે બીજે ટીવી ચાલતું હોય. બેડરૂમમાં જાય એટલે પુસ્તક હાથમાં લેવું પડે. વાંચતા વાંચતા હું જામી જાય ને હું જાઉં, પછી વાંધો ન આવે. જો વાંચું નહીં તો મરાઈ જા. બધી અનુકૂળતા કેમ કે જે અનુકૂળતાઓ પ્રાપ્ત થઈ હોય એના ઉપરનું જે પોતાપણું, ધનીપણું, મારાપણું, એનો જે રસ, એની અનુકૂળતાનો જે રસ, એની પરિણતિ જે દુઃખની થઈ ગઈ હોય છે એને બેચેને ગયા. કેમ કે પરમા તીવ્રપણે પોતાપણું એ આત્મશાંતિનું ખૂન કરીને ઊભું થયેલું છે. જે સંપત્તિ આદિમાં, આબરુ કીર્તિ આદિમાં, પરિવાર વગેરેમાં જે પોતાપણું છે, આત્માની શાંતિનું ખૂન કરીને એ પરિણામ ચાલે છે. અને જેટલા તીવ્ર રસે થાય એટલી બેચેની ઊભી થવાની થવાની ને થવાની. ફોરેનમાં મલ્ટીમિલિયનર માણસ શું કરવા બેચેન છે? તો આંકડા જ બોલે છે, સ્ટેટિસ્ટિક્સ બોલે છે. ખૂબ પૈસો છે ને ખૂબ બેચેન છે, ખૂબ પૈસો છે ને ખૂબ બેચેન છે. શું કરવા? કે લાયકાજરી છે, એની પાછળ લાયકાજરી છે. તીવ્ર મહત્વના પરિણામ થાય બેચેની ઊભી કર્યા વગર રીએ જ નહીં. અશાંતિ લાવે લાવે ને લાવે છે. પ્રતિકૂળતા આવે તોય અશાંતિ, અનુકૂળતા આવે તોય અશાંતિ. જો કેવી હાલત થાય, દુઃખથી બચવાનો કોઈ ઉપાય જ ન રહ્યો. કાં અનુકૂળતા બને ને કાં પ્રતિકૂળતા બને. મને પ્રતિકૂળતા આવી એની અશાંતિ, અનુકૂળતામાં કેમ અશાંતિ આવી એની ખબર પડતી નથી. પણ આ રિઝલ્ટ આવી ન ભૂરીએ છીએ. સાયન્ટિફિક વાત છે કે તમે એટલું બધું રસ લીધો શાંતિ થવાની. એટલે આ તો વિતરાગ માર્ગ છે, આત્મશાંતિનો માર્ગ છે. સાચે રસ્તે ચડે તો આ ભાવ તો સુધરે, પણ અનંત ભાવ સુધરે. અને અહીંયા ચૂક્યો આ ભાવ, ગયો જાય અધોગતિમાં, પછી તો કહેવાની વાત નથી. એટલું દુઃખી થવાનું છે. એટલે એમ કહે છે કે તમે જે ઉપદ્રવથી મૂંઝાવો છો એ કોઈ શત્રુ નથી, કોઈ જ્ઞાન વાર્તા જરૂર લખજો. એ વિષયમાં પણ કંઈ જ્ઞાન વાર્તા તમે લખજો. પણ ખૂબ સારી હતી, સ્વભાગભાઈની નિર્મળતા ઘણી હતી. એક પોઈન્ટ મૂકી દીધો એમણે અહીં સુધી રાખેલું.